नमस्कार ई प्रसारण के श्रोताओं, आपकी सेवा में एक बार फिर अरविंद कंसल हाजिर है। पुणे से पधारे वैद्य दिलीप गाडगिल जी के एक नए प्रोग्राम के साथ। वैद्य गाडगिल जी ने आयुर्वेद में पीएचडी और संस्कृत में एमफिल तक अध्ययन किया है। पिछले 33 वर्षों से आप आयुर्वेद के क्षेत्र में अध्यापन, रिसर्च और चिकित्सा कर रहे हैं। वैद्य गाडगिल जी नमस्कार।
हाँ नमस्कार।
आज के हमारे इस रिकॉर्डिंग में, इस शो में हम लोग आगे बात बढ़ाना चाहेंगे आहार के बारे में। पिछली बारी आपने हमें बताया अग्नि क्या होती है, किस तरह खाना चाहिए, किस काल में खाना चाहिए, नियमित रूप से होना चाहिए। आज हम शुरुआत में आपसे बात करना चाहेंगे कि आमतौर पर माना गया है कि दिन में 3 बार भोजन होना चाहिए, सुबह, दोपहर और संध्या काल। तो आयुर्वेद के हिसाब से क्या यही सच है और उसमें उसके बारे में क्या बताया गया है?
वास्तवतः आयुर्वेद का जो मूल ग्रंथों का कहना है वो केवल 2 ही बार खाना है,
केवल 2 बार।
सायं प्रातर मनुष्याणाम अश्रद्धम श्रुति चोदितम नांतरा भोजनं कुर्यात अग्निहोत्र समोविधि। यानी कि सायं और प्रातः, शाम को और सुबह, इस प्रकार के 2 ही बार खाना है। नांतरा भोजनं कुर्यात, बीच में भोजन नहीं करे, ऐसा बताते हैं। अग्निहोत्र समोविधि, अग्निहोत्र में जैसे अग्नि में आहुतियां डाली जाती है सूर्यास्त, सूर्योदय में और सूर्यास्त में, उसी प्रकार उसी पावित्र्य से 2 बार इसमें आहुतियां डाले। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, हम यशवा नरो भूतवा प्राणिनाम देहम आश्रिता प्राणापान समायुता पचाम्यन्यम चतुर्विधम, इस प्रकार। तो भगवान ही खुद स्थित है हमारे शरीर में वैश्वानर बनकर और प्राणापान से समायुक्त होकर चतुर्विध अन्न का पचन करते हैं, ऐसा बताते हैं। तो उसी हिसाब से ये अग्नि को आहुति जैसे हम देते हैं उसी प्रकार से 2 बार आहुति देनी है, ऐसी कंसेप्ट है वास्तव में। तो उसका मतलब ये रहेगा कि हमें ब्राह्मे मूर्ते उत्तिष्ठित की जो बात हुई थी तो उस समय हमारा पचन पूरा हो गया, इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए। मतलब विसर्जन करना है, होना है, वास्तव में करना भी नहीं है। तो उसका मतलब ये रहेगा कि पहले दिन का पूरा आहार, चाहे वो सुबह ले लिया हो, शाम को ले लिया हो, पूरा पच गया है इस प्रकार से। उस हिसाब से देखा जाए तो जो डिनर है वो सूर्यास्त से पहले अगर हो जाता है तो सबसे बेहतर है। अभी जैनों में ये धर्म के अनुसार बताया गया है कि सूर्यास्त से पहले खाना खाओ। सभी खाते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं इस प्रकार से। तो ये सबसे अच्छा है। हम वैद्य जो भी है, आयुर्वेद प्रैक्टिस करने वाले, हम भी ज्यादातर लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। शाम को खाना खाकर घर से निकले, फिर क्लिनिक में जाकर बैठे 10, 10:30, 11 कितने भी बजे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात के आकर घर को सोना है, बाकी कुछ नहीं करना। इसमें पचन होने में प्राकृतिक सहायता मिल जाती है, रात का भोजन जल्दी हो जाता है। तो और ज्यादा से ज्यादा 8 बजे तक खाना खा लेना चाहिए। अगर सूर्यास्त में, सूर्यास्त के पहले नहीं हो पाया, ऐसी अगर स्थिति रहेगी तो प्रथम प्रहरांतरे कर्तव्य इस प्रकार का है रात के, तो ज्यादा से ज्यादा 8, उससे आगे नहीं जाना है। और वैसे 10, 10:30 बजे अगर सो जाते हैं और सुबह 5 बजे उठ जाते हैं तो सबसे बेहतर तरीका रहेगा
जी।
अब इस दृष्टि से देखा जाए तो सुबह का जो खाना है वो 10:30, 11 बजे अगर हो जाता है तो सबसे बेहतरीन है। तो सुबह 10, 10:30, 11 बजे तक सुबह का खाना, शाम को 5, 5:30 बजे, 6 बजे ज्यादा से ज्यादा शाम का खाना, और फिर सुबह एक बार दूध, और दोपहर में चाहे तो एक आधा फल 2, 2:30 बजे, इस प्रकार से। ये सबसे आइडियल सिचुएशन है। सिर्फ इसमें फल के बारे में अभी दिक्कत है क्योंकि पेस्ट्री साइज का मारा बहुत है उसमें फल के ऊपर, लेकिन ऑर्गेनिक अगर फ्रूट लेते हैं तो ठीक रहेगा इस प्रकार से। अब बहुत सारी दिक्कतें ऐसी होती है कि लोग कहते हैं हम सुबह जल्दी घर छोड़ते हैं, 10, 10:30 बजे तो घर पे नहीं होते तो कैसे खाना,
काम पर जाना होता है,
काम पे जाना होता है। और फिर वहां का एक माहौल रहता है कि एक छुट्टी का समय दोपहर 1 बजे, 1:30 बजे, इस प्रकार का है खाना खाने के लिए, तो उसके पहले तो खाना नहीं खा सकते तो कैसे करेंगे ऐसी अवस्था। तो मेरा सुझाव रहता है कि अगर आपको जल्दी निकलना ही है घर से तो शायद आप डिवाइड कर लो, लंच जो है वो डिवाइड करो। लेकिन डिवाइड करो का मतलब ऐसा रहेगा कि जो हम लंच में खाते हैं दाल चावल रोटी सब्जी इस प्रकार से, वही डिवाइड करो। शायद दाल चावल सुबह खाके निकलो, रोटी सब्जी साथ में लेके जाओ, लेकिन क्वांटिटी वही रहेगी जो एक भोजन की मात्रा होगी वो। या उल्टा करो, रोटी सब्जी खाके निकलो, दाल चावल दोपहर में खाओ, इस प्रकार से। अभी फिलहाल हुआ ऐसे कि ब्रेकफास्ट की कल्पना जैसे ही रूढ़ हो गई तो उसमें खाना खाने से अलग जो चीजें हैं वो उसमें समा गई,
नाश्ते में
पोहा हो, उपमा हो, ढोकला हो, सैंडविच हो, इडली हो, थालीपीठ हो, जो भी है, बहुत सारे तरीके वैरायटीज है। तो जो नित्य सेवन करने में जो चीजें बताई गई है उनमें से काफी बाहर है। तो इनका आयुर्वेद का कहना है शीले चाली गोधूम एवं षष्ठ के जांगलम सुनिषण के जीवंति बाल मूल का वास्तुकम, इसमें गेहूं का इस्तेमाल है, शाली का है या चावल का है, कुछ सब्जियां है, दूध घी वगैरह इस प्रकार के पदार्थ है जिनको नियमित रूप से आप सेवन करने के लिए आपको कहते हैं। लेकिन पोहा पुर्तुका जो बोलते हैं वो नवजात भुक्तवान खाद्य मात्रा खाद्य भुक्षिता इस प्रकार का उसके बारे में निर्देश है कि थोड़ा ही खाना है, खाने के बाद पोहा नहीं लेना है इस प्रकार से। और कपोविष्टम्भ कारण कफ और विष्टम्भ बनाने में कॉन्स्टिपेशन करता है, कब्जियत करता है, कफ को बढ़ावा देता है ऐसा है। मेरा खुद का अनुभव रहा था कि मैं दही पोहा इस प्रकार से बहुत खाता था बचपन में और मुझे सर्दी जुकाम बहुत था और उसका पता नहीं लग रहा था कि ये किस वजह से है इस प्रकार से। तो 18 बरस तक मैं भुगतता रहा, ऑट्रिविन की बहुत सारी बोतलें मैंने खत्म कर दी, एंट्रम पंक्चर किया, एंटीबायोटिक्स ले लिए, स्टीरॉइड्स ले लिए, बहुत सारी चीजें की। और आयुर्वेद में आने पर पता चला कि ये दही पोहा ये कारण है। तो इसको छोड़ दिया,
दोनों ही सही नहीं, दही भी सही नहीं है,
पोहा भी सही नहीं है इस प्रकार से। लेकिन उसी तरीके से ढोकला है, समोसा है, कचौरी है, बटाटे वड़ा है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें ऐसी है अभी तली हुई चीजें जो ब्रेकफास्ट के रूप में आती है इस प्रकार से। और कहीं जगह ऐसा भी होता है कि लोग बहुत जल्दी बाहर निकलते हैं, 5, 5:30, 6 बजे भी बाहर निकलते हैं, तो बोलते हैं कि कंपनी का खाना बढ़िया रहता है, हाइजेनिक होता है, तो उसमें क्या दिक्कत है लेने में। फिर भी हम नहीं कहते हैं क्योंकि कमर्शियल है तो शॉर्टकट्स होते ही है, ऐसा नहीं बता सकते कि शॉर्टकट्स नहीं होंगे इस प्रकार से। और दूसरी एक चीज महत्वपूर्ण है घर के खाने के बारे में कि जो प्यार है, जो लगन है, वो तो बाहर नहीं आ पाएगी आप, तो इस हिसाब से बेहतर है कि घर का ही खाना खावे। और उसमें भी चेंजिंग मेनू नहीं होना है, इसी में दाल चावल रोटी सब्जी इसी में खाना है, बाकी कुछ नहीं खाना है वास्तव में। और वैसी ही परंपरा थी पुराने जमाने में, उसमें परिवर्तन नहीं होता था। हमारे कोंकण में लोग कहते थे कि हर रोज चावल ही रहता था, त्योहार कभी है तो रोटी बनती थी, नहीं तो रोटी बनने का कोई सवाल नहीं, दाल चावल या फिर चावल ही पकाकर उसके और कुछ पदार्थ बना के बस उसका उतना ही खाना, बाकी कुछ खाना ही नहीं रहता था। और तबीयत में कुछ बिगाड़ भी नहीं आता था, बरसों तक ऐसा सिलसिला चलता था, ऐसी कोई आपत्ति नहीं आती थी। जब से ये इजीली अवेलेबल हो गया, आसानी से सभी जगह मिल रहा है और चटपटी चीजें बन रही है इस प्रकार से, तो लोग उसकी तरफ आकृष्ट हो गए। दूसरी तरफ हाथ में पैसा आ गया तो आसानी से खर्च कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी सी परिस्थिति रही, तो ये काफी परिवर्तित हो गया। और लोगों के मन में ये स्थिति है ही नहीं कि ये कारण है हमारे बीमारी का, हाइजीनिक खा रहा हूं, चाय तली हुई चीजें के बारे में लोग थोड़े जागरूक हो गए कि वह नियमित रूप से नहीं लेना है इस प्रकार से। मैंने एक अजीब मरीज देखा परसों, डायबिटीज का मरीज था, ये दवा करीबन 1 बरस से चल रही है, कंट्रोल्ड है, उसको भ्रम हुआ, चक्कर आने लगा, फिर पूछताछ की तो पता चला कि बटाटे वड़ा हफ्ते में 3-4 बार सेवन करते हैं। कहा अजीब बात है, आप 1 बरस से मेरे मरीज है और आप इस प्रकार से खा रहे हैं, कैसी चीज है ये। तो बोले कि क्या है, डायबिटीज है तो इसके लिए परहेज करना है तो मधुर चीजें नहीं खानी है, तो इसमें मधुर तो कुछ है नहीं। अजीब सोच लिया आपने, वैसे आलू इसमें निषिद्ध है ये भी नहीं माना, और तली हुई चीज है ये भी नहीं समझा कुछ इस प्रकार से। तो ये बड़ी अजीब चीज होती है कि लोग ऐसा समझते नहीं है कि डायबिटीज का पथ्य करना, परहेज करना है तो ठीक है, मधुर चीजें नहीं खाना है, चाय नहीं पियेंगे चक्कर वाली, या साक्षात चक्कर वाले पदार्थ नहीं खाएंगे, बस हो गया डायबिटीज का पथ्य, ऐसी तो स्थिति है ही नहीं। तो जिनको नित्य सेवनीय कहा गया है उन्हीं चीजों का सेवन करते रहे, और जिनको नहीं लेना है उसमें दही वगैरह की भी बात है, ये नियमित रूप से नहीं लेना है इसके बारे में,
दही तो ना,
दही
पर तक्र की बात,
तक्र चलता है, तक्र में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जिसको नियमित में रूप में नहीं लेना है वो लेते रहते हैं अगर लोग, तो काफी परेशानी हो जाती है। तो एक चीज ऐसी है कि ब्रेकफास्ट वैसे लेना ही नहीं है, सबसे अहम चीज, अगर लेना है तो लंच को डिवाइड करके लेना है, ये दूसरी चीज। और तीसरी चीज घर में बनाए ले लो, शायद गृहिणी को जल्दी सुबह उठ के बनाना पड़े, इस प्रकार से 5 बजे जाना है तो भी, लेकिन घर का टिफिन लेके निकलो। कभी एक आध बार ऐसा हुआ कि नहीं बना तो ठीक है बाहर का ले लेंगे,
पर नियमित रूप से
नियमित रूप से घर का ही खाना खावे, ये सबसे आम चीज है। एक ने मुझे सवाल पूछा था कि अगर बाहर का खाना अनिवार्य ही है तो क्या करें। इस प्रकार से खास करके विद्यार्थी है, शिक्षा के लिए बाहर रहते हैं या फिर नौकरी के हिसाब से बाहर रहते हैं, तो फिर अकेले रहते हैं, खाना पकाने की तो आदत नहीं है या फिर सुविधा भी नहीं है, ऐसी स्थिति है तो क्या करें। तो मैं सुझाव देता हूं कि ऐसे ही रोटी सब्जी वाले ही पर्याय ढूंढो। फिलहाल बीच में परिस्थिति ऐसी थी कि रोटी सब्जी मिलती ही नहीं थी, अगर हम लेना भी चाहते हैं बाहर से तो मिलती ही नहीं थी, लेकिन अभी काफी माहौल बदल रहा है और रोटी सब्जी मिलने लगी है कम से कम, तो वो बेहतर ऑप्शन है कि दूसरा कुछ लेने से बेहतर होगा कि रोटी सब्जी, नहीं तो वड़ा खा लेंगे, समोसा खा लेंगे वगैरह, उसके बेहतर अच्छा है कि रोटी सब्जी खा ले। तो मैंने उसमें ऐसा जिक्र किया था कि एडवर्टाइजमेंट किसकी होती है इसके ऊपर सभी निर्भरता है। रोटी सब्जी की एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, पिज्जा की होती है, डोनट्स की होती है, बर्गर्स की होती है, सभी की एडवर्टाइजमेंट होती है इस प्रकार से, और वो बिकता है, वास्तव में टेम्पटिंग होता है लोगों के लिए इस प्रकार से। तो हम एडवर्टाइज किसकी करना चाहते हैं, ये एक अहम चीज इस प्रकार में रहेगी, और अभी हमारा फोकस ही किसी दूसरे जगह पर है, ऐसा है, हम समझ नहीं रहे वास्तव में आरोग्य के लिए क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए इस प्रकार से।
जी हाँ।
और जो अच्छी चीजें हैं उनको टाल रहे हैं, जो बुरी चीजें हैं उनको अपना रहे हैं, और समझ में नहीं आ रहा कि ये हम गलत कर रहे हैं इस प्रकार से।
इसमें पर आम लोगों को मालूम नहीं होता कि क्या सही है क्या नहीं है, और इसलिए जरूरी कि हम ये रेडियो प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों तक ये बात पहुंचे कि सही क्या माना गया, उसकी क्या मापदंड है। जैसे आमतौर पर आजकल तो आप वेस्टर्न मेडिसिन में आप डॉक्टर से मिलें और न्यूट्रिशनिस्ट से बात करें तो उनका सबका ये कहना है कि आप हर 2 घंटे बाद कुछ न कुछ सेवन करते रहिए छोटी छोटी चीजों का, तो ये तो बिल्कुल आयुर्वेद के जो विचार है और
उसके
सलाह है उसके बिल्कुल विपरीत हुआ।
बराबर।
दूसरी बात ये भी आमतौर पर मानी जाती है कि आप बिल्कुल भी फैट रिड्यूस कर दें, जैसे आपने पिछले शो में भी कहा ये बात सही नहीं है, इसके बारे में कुछ आप कहेंगे और।
ठीक है, ऐसा है 2-2 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा खा लेना, ऐसा बताने का भी ट्रेंड है, और खास करके ओबेसिटी वगैरह इस प्रकार के मरीजों में, डायबिटीज वगैरह इस प्रकार के मरीजों में इसके बारे में जिक्र किया जाता है। हमारे हिसाब में ये गलत है, ऐसा है जैसे कि मैंने बताया कि कुक्षी के 3 भाग कल्पनीय है और एक हिस्सा, एक तृतीयांश जो है वो घन के लिए, एक द्रव के लिए इस प्रकार से करना है, और उसको एक समय लगता है 5-6 घंटे का, 3 घंटे का तो ऐसे समय लगता है पचन होने के लिए, लेकिन वो पचन होकर आगे निकल जाए और फिर क्षुधा की प्रचिति हो, इसमें 5-6 घंटे का होता है, और दूसरे उसके अंदर दूसरा कुछ लेना है, लेकिन फिर उसमें सुझाव मैंने फल का दिया था कि बीच में एक बार फल खाओ और सुबह एक बार दूध ले लो इस प्रकार से, और 2 ही दफा खाना इस प्रकार का खाना है। इसमें ऐसा होता है कि शरीर को उसकी फिर आदत पड़ जाती है अगर आप 2-2 घंटों के बाद इस प्रकार से करते रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक जो भी उपकरण है, बैटरी जिसमें होती है, इसमें आप देखेंगे कि फुल रिचार्ज और फुल डिस्चार्ज, ये टेक्निक है कि जब फुल रिचार्ज करे तो फुल रिचार्ज करे और डिस्चार्ज करे तो पूरी डिस्चार्ज हो जाने के बाद रिचार्ज शुरू करें। अगर आप डिस्चार्ज करना ही नहीं चाहेंगे, सब प्लग इन करके ही करना है इस प्रकार से, तो बैटरी को आदत ही नहीं होगी डिस्चार्ज होने की इस प्रकार से, और जब कभी ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कुछ काम ही नहीं होगा। अगर हाफ रिचार्ज ही करते रहते हैं आप तो उतनी आदत पड़ जाती है, उसके आगे वो डिस्चार्ज भी नहीं होती। तो आमाशय की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से 2 बार खाना, ऐसा बताया गया है। हम अपनी कैपेसिटी कम कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा खाना इस प्रकार से लेते हैं। अभी इसके बारे में कुछ संदेह स्थल है, इंसुलिन का बार बार सिक्रेशन होता रहता है, वो अच्छा नहीं है, अभी कुछ न्यूट्रिशनिस्ट का इस प्रकार का कहना है, ये जो बीच में ये बताया गया वो गलत चीज थी, ऐसा अभी वो बता रहे हैं, कुछ न्यूट्रिशनिस्ट बता रहे हैं इसके बारे में। लेकिन हमारे हिसाब में देखा जाए तो एक तृप्ति होना, ये एक हमारे हिसाब से महत्वपूर्ण चीज है, जो हम लेते हैं उसका एक समाधान हमें मिलना चाहिए। अगर हम ऐसा ही थोड़ा थोड़ा लेते रहेंगे तो तृप्ति नहीं होती है, उस लोगों का कहना ऐसा भी है उसमें कि होती है उसमें भी तृप्ति, वो मानने पर है सभी में। लेकिन कोई भी डाइट प्लान अगर तृप्ति नहीं होती है, समाधान नहीं होता है, तो टिकता नहीं। आप 8 दिन करेंगे, 15 दिन करेंगे, फिर छोड़ देंगे।
और इसके बारे में जो स्टैटिस्टिक्स भी है ऐसे डाइट्स के बारे में, वो यही है कि एक साल बाद 90% लोग जो होते हैं उनका या तो पुराना वजन दोबारा आ जाता है या और उससे ज्यादा बढ़ जाता है, और 5 साल बाद तो मेरे ख्याल से उसकी सक्सेस रेट जो है वो less than 5% बताई गई है।
बराबर है। तो हम कहते हैं कि सस्टेनेबल चीज अगर होनी है तो तुम्हारी कैपेसिटी का फुल इस्तेमाल करो जो है। उसमें भी वो बताते हैं कि 2/3 का ही इस्तेमाल करना है, पूरी कैपेसिटी भी नहीं लेनी है, लेकिन 2/3 ये ऑप्टिमम है, तो उसका इस्तेमाल करो और उसको उतना अंतर दे दो पचन होने के लिए, ये सबसे बढ़िया है। और उससे इंसुलिन सिक्रीशन वगैरह जो बातें अभी बताते हैं, आयुर्वेद की बात नहीं है ये, तो वो अच्छा सिग्नल जाता है ऐसा उनका कहना है। फिलहाल बीच में ये बात आ गई है अभी कि थोड़ा थोड़ा खाना खाओ इस प्रकार से, हम नहीं मानते हैं कि ये गलत है। अगर आपकी कैपेसिटी कम है, कभी कभी हम बताते हैं इस प्रकार से कि अग्नि इतना मंद है कि अगर वो एक समय में 3 रोटियां खा लेगा तो अजीर्ण हो जाएगा, तो ठीक है एक दफा एक रोटी फिर एक रोटी इस प्रकार से खाओ, लेकिन अग्नि को सुधारो। उस समय हम दवाइयां भी साथ में देते हैं कि एक रोटी के बजाय 1.5 रोटी खा जाए, 2 रोटी पचा सके, ऐसा हो जाए और फिर एक बार 3 रोटी तक आ जाएगा तो 2 ही बढ़वा खाना खाना, ये स्टेपिंग स्टोन जैसा करते हैं। या जब मैं दूध के ऊपर रखता हूं मरीजों को, कैंसर के मरीजों को खास करके, तो मेरी सलाह ये रहती है कि आप जब भूख लगे, जितनी भूख लगे उतना दूध ले लो, शायद 100 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर, जितना है आपकी भूख के अनुसार लेना है। ऐसा नहीं है कि इतना लेना है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो जाती है कि 1-2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर इस प्रकार का दूध ले जाते हैं दिन भर में। तो कितनी बार लेना है वास्तव में, तो 3 या 4 बार हम बताते हैं। तो एक दफा एक 0.5 लीटर दूध एक दफा, ये काफी बड़ी मात्रा होती है वैसे देखा जाए तो। लेकिन जो मैंने बात कही 1200 मिलीलीटर का अगर है आपका आमाशय का कैपेसिटी का, उसमें अगर हम 800 मिलीलीटर तक लेना है तो 2 दफा में ये हो जाएगा सायं प्रातः। इस प्रकार के दूध है, लिक्विड है, तो थोड़ा हल्का है, तो थोड़ा ज्यादा दे सकते हैं, तो 2 के बजाय 3 या 4 बार करेंगे, लेकिन हो सकता है ऐसा। लेकिन ये सोच समझ कर करने की चीज है, और हम ही हमारी कैपेसिटी कम नहीं करें, ये इसमें एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। तो अभी शायद ये परिवर्तन आता रहेगा और एलोपैथी बहुत सारी चीजें सीख रही है, तो ये बाद में 10-15 बरस के बाद में आएगा, नहीं बराबर था ये 2 ही दफा खाना खाना चाहिए, इस वजह से वापस में परिवर्तन में आ जाएगा, ऐसा होगा थोड़ा सा। तो ये एक चीज उसमें रहेगी कि सुबह और शाम ऐसे 2 ही दफा खाना खाना है, दाल चावल रोटी सब्जी छाछ चाहे तो, और पानी, पानी के बारे में ऐसा है पानी जितना कम पिए उतना अच्छा है।
खाना खाते समय
थोड़ा थोड़ा लेते रहे ऐसा है, और पूरे दिन भर में पानी जो है वो भी सीमित रखे। अभी एक प्रचार ऐसा है कि पानी भरपूर पिए,
बल्कि यहाँ तो सलाह दी जाती है कि आपको एक दिन में 8 गिलास या 8 कप पानी पीना चाहिए।
तो 8 गिलास, 1 गिलास 200 ml का रहता है, कितना रहता है लेते हैं वो ग्लास लेने की,
तो वो 1 गिलास मतलब उन्होंने 8 आउंस का,
8 आउंस का तो 250 लीटर, 250 मिलीलीटर हो गया, 30 ml का 1 आउंस होता है तो 240 हो गया, तो 2 लीटर का हो गया इसके पानी से। यह हमारे शास्त्र में नहीं है बराबर। वही उदाहरण लेते हैं, 1200 मिलीलीटर आपकी कैपेसिटी है तो 400 मिलीलीटर द्रव लेना है आपको भोजन के समय। उस द्रव में पानी भी आ जाएगा, छाछ भी आ जाएगा, करी का पानी भी आ जाएगा,
दाल का पानी भी आ जाएगा,
सभी जो है वो उसमें आ जाएगा। तो 200 ml पानी के लिए ज्यादा से ज्यादा उसमें स्कोप रहेगा। 2 दफा खाना खाना है तो 200-200-400 हो गया, और बीच में कभी प्यास लगती है उसके हिसाब से 400 और ले लिया तो 800, और ज्यादा से ज्यादा पानी 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर या 1200 मिलीलीटर जो गर्मी का मौसम वगैरह है, तो इससे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। एलोपैथी के हिसाब से भी नहीं, वास्तव में नहीं है इसके ज्यादा इस प्रकार से। लेकिन क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि पानी जितना ज्यादा पियोगे उतना शरीर स्वच्छ रहेगा, शुद्ध रहेगा, जैसे कि नाली को साफ करना है इस प्रकार से बोलते हैं, ये गलत है। पानी का भी पचन होना है, हमारे आयुर्वेद में उदक व स्रोत से अलग स्रोत बनाया गया है पानी के, और उसका पचन होना जरूरी होता है कि एक जगह का पानी लेकर दूसरी जगह में गए तो जब तक उस जगह का पानी का पचन नहीं हुआ है तब तक यहां का पानी नहीं पीना है, ऐसा एक सूत्र संग्रह में आए पानीयम न तो पानीयम पानीयन्य प्रदेश अजीर्णे क्वथिते चामम पक्वे जीर्णे भी नहीं तरफ इस प्रकार का बहुत लंबा सूत्र है। तो दूसरे देश के पानी का अजीर्ण होने पर इस देश का पानी नहीं पीना है, इस प्रकार से वो बताते हैं। तो इसका एक मतलब सीधा है कि पानी का पचन होना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि एक व्हीकल है अंदर आता है निकल जाता है, ऐसी स्थिति नहीं है। तो अगर ये जल महाभूत है वास्तव में, एक वो ज्यादा मात्रा में हो गया वो अग्नि को बुझा देता है पानी बाहर, उसी प्रकार वो जठराग्नि को बुझा देता है। मैंने एक अजीब मरीज देखा था, तमक श्वास ब्रोंकियल एस्मा की शिकायत थी, वह करीबन 70 के पास आसपास था और एक ही दफा खाना खा रहे थे, 40 वर्षों से तमक श्वास की शिकायत थी। तो मैंने पूछा कि आप दूसरी बार क्यों नहीं खाना खाते हैं, तो मतलब भूख नहीं लगती है। तो मैंने सोचा कि भूख नहीं लगती है तो बेहतर है नहीं खाना खावे, एक ही बार खावे। इस प्रकार से फिर पूछताछ हुई तो बाद में पता चला कि पानी बहुत पी रहे थे, 4 लीटर पानी पी रहे थे दिन भर में। तो फिर मैंने बताया कि तो ये बराबर नहीं है बात, आपको प्यास लगती है क्या? तो बोले ऐसे नहीं है, ऐसे बताते हैं ना पानी ज्यादा पीना अच्छा होता है, इसलिए पीते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, उबला हुआ पानी ले लो, जितना चाहिए उतना ही ले लो, सिप्स में ले लो, गर्म पानी पीना है, बाकी कुछ नहीं लेना है। दो ही दिन में उन्होंने बता दिया कि मुझे शाम को भूख लगने लगी।
अच्छा,
तो ये जैसा प्रतिपक्षत्वाद मंदाग्निर्वर्जय जलम इस प्रकार का सूत्र है। तो 40 वर्ष तक जिन्होंने शाम को खाना खाया ही नहीं था उनको तुरंत भूख लगने लगी, तो पानी जैसे कम कर दिया उस प्रकार से। फिर मैंने सुझाव दे दिया कि ठीक है, अब मूंग का सूप पहले शुरू करो, आरंभ करो, फिर धीरे धीरे खाना बढ़ाओ इस प्रकार से। मैं थकान आती थी, वो थकान कम हो गई उनकी। तो कहने का मतलब है, दूसरी हमारी एक अजीब केस मैंने देखी थी, वो तो जैन संन्यासी थे, वो भी ऐसे ही 4 लीटर पानी पीते थे और अग्नि बिल्कुल मंद था, 15 ग्राम चावल और 10 ग्राम दाल, मूंग की दाल, इतना ही खाना था उनका
बस।
और उससे ज्यादा लेंगे तो अजीर्ण हो जाता था, शक्ति नहीं रहती थी, वजन 30-32 किलो तक था। और उनका मूल कारण आयम बिल उन्होंने किया था, 145 दिन का आयम बिल किया था। ये जैनों में एक व्रत रखते हैं, रूखा खाना खाते एक ही बार, और विहार भी होता है उसमें, प्रवचन भी होते हैं वगैरह वगैरह। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने सुझाव दिया कि आप पानी कम कर दें पीने का। तो वो बोले कि मुझे तो तरस लगती है, ऐसा नहीं है कि मैं जबरदस्ती पानी पी रहा हूं, मुझे प्यास होती है। उन्होंने कहा ठीक है, उसके हिसाब से कुछ करेंगे, लाजा सिद्ध जल पियेंगे तो आपकी तरस कम हो जाएगी। तो फिर उन्होंने मान लिया, जैसे लाजा सिद्ध जल शुरू हुआ पानी का प्रमाण 1 लीटर तक नीचे आ गया, पानी का प्रमाण कम हो गया तो भूख बढ़ने लगी। तो मैंने कहा कि आप बकरी का दूध शुरू करो अभी, हमारे हिसाब में वो शोष था, अध्वशोष वगैरह इस प्रकार से, और उसके हिसाब से ये बकरी का दूध अच्छा है, उसकी सुविधा तो थी उनके पास, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। 1 लीटर दूध जाने लगा तो वजन बढ़ने लगा, 30-32 तक जो रुका था वो 36 तक एक महीने में वजन बढ़ गया इस प्रकार से, केवल इस परिवर्तन से। तो कहने का मतलब ये है कि पानी एक महाभूत है। अभी जो प्रॉब्लम दिखाई देते हैं किडनी फेलियर के वगैरह इस प्रकार के, इसमें पानी का एक अहम रोल है। क्या होता है कि पथरी मूत्र में जो होती है, मूत्राश्मरी कहते हैं, वो कुछ लोगों में होती है, उसका मेन कारण जो है टमाटर और अंडे है,
किडनी स्टोन्स
के लिए। तो उसको बंद नहीं करेंगे तो वो बनते रहेंगे, तो उसको छोड़ना ही है। उसके लिए पानी बहुत पीने के लिए कहते हैं और वो चालू रहता है, और फिर समाज में भी ये प्रचलन हो जाता है कि नहीं पानी भरपूर पीना है इस प्रकार से। तो अगर एलोपैथी के हिसाब से भी देखें तो किडनी की एक कैपेसिटी है अपनी अपनी, जो पूरे परमेश्वर ने उसकी योजना की है कि इसको इतना लाखों लीटर पानी को, रक्त खून को गालना है या फिर फिल्टर करना है और मूत्र की निर्मिति करनी है, उनके हिसाब से, एलोपैथी के हिसाब से। अगर हम पानी ज्यादा पीकर उस कैपेसिटी को 50 बरस में ही खत्म कर देंगे तो आगे क्या होने वाला है? सीधी सीधी बात है। तो किडनी फेलियर में बाद में पानी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, डायलिसिस जब आरंभ होता है तब पानी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन वो शुरू से ही करना चाहिए वास्तव में,
और
उससे पूर्व भी करना चाहिए। तो एक चीज साफ है कि पानी कम ही पीना है, केवल ग्रीष्म ऋतु जो गर्मी का मौसम है या शरद ऋतु, उसमें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, तो उस समय आवश्यकता अनुसार पानी बढ़ाए।
तो यूं उसूल मान लिया जाए कि जब आपको जरूरत हो, प्यास लगे, तब आप पानी पिए
और सिप्स में पिए,
और सिप्स में
ज्यादा मत पिए, एक बार एक पूरा ग्लास कर लें,
ऐसा कोई जरूरी नहीं है,
ऐसा जरूरी
है, ऐसा कोई गोल नहीं है, ऐसा कोई आपको किसी लेवल पे नहीं पहुंचना है, जो आपके जो शरीर आपको जो कह रहा है आप उसकी सुने। खाने पर जब बात चल रही है तो एक ये आप फिलोसफिकल भी सवाल मान सकते प्रश्न मान सकते हैं या किस तरह से कि हम खाना क्यों खाते हैं।
अच्छा सवाल है, मैंने मेरी किताब में इसके बारे में कुछ जानकारी दी है। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं कि जिसके कारण हम खाना खाते हैं। एनालाइज करेंगे तो बहुत सारी चीजें सामने आएगी और हम भी चौंक जाएंगे। एक सबसे अहम कारण खाना खाने का होता है कि भूख लगी है, और वो सबसे अहम कारण है खाना खाने का और सबसे सही है। शरीर एक डिमांड करता है कि शरीयते तत् शरीरम, उसका क्षय होता रहता है शरीर के परमाणुओं का, और फिर उसके लिए खाना चाहिए। तो शरीर में डिमांड होती है कि भूख लगी है, खाना खाना है, इस प्रकार से। तो वो सबसे अहम समय है खाना खाने, और सबसे अहम रीजन है खाना खाने के लिए। सिर्फ उसमें एक बात हो सकती है कि हमारी भूख सही है या आभास है, ये भी देखना चाहिए। इसलिए संस्कृत में एक शुद्धा और बुभुक्षा, ऐसे दो शब्द है। शुद्धा जो सच्ची भूख कहलाती है, और बुभुक्षा जो है वो भोक्तुम इच्छा बुभुक्षा, इच्छार्थक रूप है, खाना खाने की इच्छा। तो वास्तव में वहां क्षुधा हो या न हो, क्षुधा है तो बुभुक्षा होगी, लेकिन क्षुधा न हो तो भी बुभुक्षा हो सकती है। हम रास्ते से चल रहे हैं, चले जा रहे हैं, कुछ सुगंध आ गया, अरे वहां बटाटे वड़ा तल रहे हैं, अच्छी वास आ रही है, चलो खा लेते हैं, इस प्रकार से पिज्जा का हो गया, कुछ भी इस प्रकार का, डोनट का हो गया। तो ये हमें टेम्पटिंग होता है, वास्तव में भूख नहीं है, लेकिन जब इस प्रकार का माहौल होता है तो इच्छा होती है मन में कि खाना खावे। तो ये बुभुक्षा है, ये क्षुधा नहीं है। तो अगर क्षुधा नहीं है तो टेम्प्ट नहीं होना है, बुभुक्षा को सहन करना है। खाने की इच्छा अगर हो भी हो तो भी उसको कंट्रोल करना है। वास्तव में सच्ची भूख उसी को कहेंगे जबकि हमें ऐसा कुछ खाना सामने आए जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। करेले की सब्जी हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन और कोई चारा है ही नहीं, दूसरा कुछ मिलने वाला नहीं है। तो वही सही, कुछ नहीं उसमें। तो जो डिस्कवरी में वो शो रहता है ना, मैन वर्सेस वाइल्ड, बेयर ग्रिल, उसको देखने के बाद पता चलता है कि आदमी को जिंदा रखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। कीड़े मकोड़े से लेकर कुछ भी खाना खाता है, स्वाद कैसा भी हो, क्या भी हो, लेकिन अगर जिंदा रहना है खाना खाने के लिए,
तेज भूख लगी,
भूख लगी है तो जिंदा रहना है, तो इतनी तो आपत्ति नहीं आती है हमारे हिसाब से। लेकिन टेम्पटेशंस को अगर हम टालेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार से होगा। तो हमारी भूख पदार्थों के ऊपर निर्भर नहीं होनी चाहिए। ऐसी भूख अगर है, चटपटित खाना सामने आए तो खाना खाने की इच्छा हो जाए, तो समझ लेना चाहिए अच्छी भूख नहीं है, ये बुभुक्षा है। तो वो सबसे अहम चीज है कि भूख लगनी चाहिए तभी खाना लेना है। अभी बहुत सारे दूसरे तरीके भी होते हैं कि जिसके कारण हम खाना खा लेते हैं इस प्रकार से। इसमें ये बुभुक्षा एक महत्वपूर्ण है। अभी जो बताई मैंने, माताएं जो है वो अपने बच्चों के सेहत के बारे में बहुत ही जिक्र करती है,
हमेशा चिंतित रहती,
और मैंने आज तक ऐसी माता नहीं देखी कि जो समाधानी है कि मेरा बच्चा अच्छा खाता है, खाता पीता है।
बिल्कुल,
किसी को भी पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं, खाना ढंग से खाता ही नहीं है, कम ही खाता है, वगैरह वगैरह। तो वो जबरदस्ती खिलाते रहती है। बिल्कुल जो छोटे बच्चे है, दो ढाई बरस के, वो तो खाते नहीं है, आप कितना भी करें, वो उनकी समाधान का तृप्ति हो गई एक बार तो छोड़ देते, कुछ भी आप करें वो मानते नहीं है। लेकिन थोड़े बड़े हो जाए, आठ दस बरस के, ग्यारह बारह बरस के हो जाए, तो उनको जबरदस्ती खिलाया जा सकता है कि नहीं नहीं इतना खाना ही है तुम्हें, ऐसा कैसे करते हो,
बिना खाए उठ नहीं सकते,
उठ नहीं सकते वगैरह वगैरह। तो वो आदत पड़ती है थोड़ी सी इस प्रकार से। और अभी उसमें दूसरी भी चीज होती है कि बच्चे भी डिमांड करने लगते हैं। अभी जंक फूड है, फास्ट फूड है, टीवी पर देखते हैं, दूसरे के घर जाते हैं वहां पे देखते हैं, पार्टीज में जाते हैं वहां पे देखते हैं, हमारे घर में क्यों नहीं, हमारे लिए भी चाहिए।
उसका टेस्ट भी बन जाता है ना, उसका स्वाद भी आने लगता है खाने पर।
बराबर, और उनको तो समझ नहीं है क्या अच्छा है क्या बुरा है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से तो जिद करते हैं। लेकिन खास करके माताएं या फिर दादा नानी, नाना नानी वगैरह जो है वो, दादा दादी, ये भी इस प्रकार के जिक्र करते हैं, नहीं नहीं खाना है दादी या नानी, इस प्रकार से। तो ये भी गलत बात है। कोलटकर जी ने एक अजीब केस के बारे में बताया था। एक औरत लेकर आई थी अपने पांच छह बरस वाले लड़के को। उनका कहना था कि हमारे मेहमान हमारे घर पे आते हैं, दो महीने रुकते हैं तो उनके वजन बढ़ जाते हैं, लेकिन ये देखो मेरा बेटा वो मैं कितना खिलाती हूँ उसको, उसका वजन बढ़ता ही नहीं है और तकलीफें होती रहती है। तो सर ने पूछा क्या क्या करती हो, तो मैं सुबह उठता है, दूध ले लेता है, थोड़ा उसमें बोर्नविटा वगैरह ऐसा कुछ डालते हैं, फिर स्कूल के लिए चल पड़ता है, टिफिन में कुछ इस प्रकार के देते हैं, दो रिसेस होते हैं, छोटी रिसेस एक बड़ी रिसेस, छोटी रिसेस में खाने के लिए कुछ, बड़ी रिसेस में खाने के लिए कुछ। घर में आते हैं तो फिर उसको भोजन खिलाते हैं, फिर 3 बजे उठता है तो फिर दूध पिलाते हैं, फिर शाम को 5 बजे ग्राउंड पे जाना है तो फिर कुछ खिलाते हैं, ग्राउंड से आता है तो फिर दूध पीता है, और फिर 8-9 बजे 8-8:30 बजे खाना खाता है, सोता है, और जो सोने में देर होती है तो फिर से दूध पिलाती है। तो सर ने बताया आप एक काम करो, 2 दफा दूध और 2 दफा खाना, इसके बगैर कुछ नहीं देना, अगर वो डिमांड करता है तो देखेंगे क्या करता है। तो थोड़ी चौंक रही, मुझे तो दवाइयां कुछ दे दो वगैरह, दवाई की कुछ जरूरत नहीं है, इतना मैंने बताया वो करो, बाकी कुछ मत करो। 1 महीने में उसका वजन बढ़ गया खाना कम करने के बावजूद। इसका मतलब ये है कि जो खाना खा रहे हैं उसका पचन होना चाहिए ना। अगर वो नहीं हो रहा, उसके आम बन रहा है, उसके कुछ सर्दी जुकाम हो रहे हैं, शिकायतें हो रही है, तो क्या मतलब है उसका देने का। तो अब सबसे अहम चीज है कि जो खाना खाए वो उसको पचाए, पहली अच्छी भली भांति। तो इस प्रकार से जबरदस्ती तो नहीं करनी है। कई दफा ऐसा होता है कि बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, भूख लगती भी है तो महसूस नहीं होती, खेलने में इतने दंग हो जाते हैं कि पता ही नहीं निकलता। इस प्रकार से उसको कैसे डिस्ट्रैक्ट करिए, अजीब बात है। अभी ये कंप्यूटर गेम्स और सभी में इतने बच्चे उलझ जाते हैं कि कुछ ध्यान ही नहीं रहता, इस प्रकार
भूख का भी एहसास नहीं होता। पर आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि दिन में 2 बार खाना, ये बात बच्चों पर भी लागू
है।
सिर्फ ऐसे ही नहीं कि
नहीं, लेकिन उसमें है बढ़ती उम्र है, अगर सच्ची भूख है तो बीच में खाना दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, नहीं तो दूध दे दे, ज्यादा बेहतर ऑप्शन जो है वो दूध दे दे इस प्रकार का। लेकिन 2 दफा खाना ये अहम चीज है, और दाल चावल रोटी सब्जी यही खाए,
यही खाए,
हाँ यही खाए, ये सबसे अहम चीज है। अभी क्या होता है, अभी मेरे मिसेस का प्रबंध था पीएचडी का, वो 2.5 से 5 वर्ष के लड़कों का खाना इसी प्रकार का विषय था, और उनके रोगों से उसका कुछ ताल्लुक, कृमि, ये तमक श्वास वगैरह ऐसे कुछ विकार रहते हैं, तो उसके बारे में उसका संबंध कैसे है क्या। तो जो टीचर थी, हेडमिस्ट्रेस वहां की कॉलेज स्कूल की, बच्चों का अध्ययन किया 150-200 इस प्रकार की, तो वो बोली आप एक बार आकर, सिर्फ एक बार नहीं, 2-3 बार 4 बार आकर पालक शिक्षक सभा जो होती है, पेरेंट्स मीटिंग, उसमें आकर आप सुझाव दे देंगे कि क्या खाना खाना है क्या नहीं खाना है वगैरह वगैरह। इस प्रकार से हम मना करते हैं, फिर भी लोग केक लाते हैं, ब्रेड लाते हैं, फरसान लाते हैं, चिवड़ा लाते हैं। बच्चे जो है उनका तो दोष नहीं है, माता देती रहती है,
बांध के देते हैं।
हाँ, और हम बताते रहे नहीं रोटी सब्जी लानी है, मानते नहीं है, तो फिर बहाने बनाते हैं, बनी ही नहीं करते वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो इनको शिक्षा कैसे मिले, ये अजीब बात है। अभी और न्यूक्लियर फैमिलीज है, वो भी कहीं सर्विस पे जा रही है, वो भी कहीं से कुछ टिफिन लेके जा रही है, तो और ही अलग बात हो गई इस प्रकार से। तो ये काफी अभी समस्या है इस प्रकार के, बच्चों के बारे में कैसे करें, उसके निपटारा कैसे हो। तो एक फोर्सफुल ईटिंग का उसमें होता है, दूसरा एक फोर्सफुल ईटिंग दिखा जाता है बच्चों के बारे में भी, वो पैम्परिंग होता है थोड़ा सा। अभी माँ बाप दोनों सर्विस करने वाला है या अपने अपने बिजनेस में है, घर में समय नहीं दे सकते, तो एक गिल्ट रहता है
जी
कि हम बच्चों की देखभाल अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो उसको कुछ कहीं ना कहीं कॉम्पेंसेट करना है। सबसे आसान तरीका कॉम्पेंसेट करने का पैम्परिंग है कि उसको खिलाओ, उसको खिलौने लेके दे दो वगैरह वगैरह। वास्तव में इसको भी किसी चीजों की जरूरत नहीं, आपको समय ही देना है, वही सही है। वास्तव में समय नहीं दे सकते, समय नहीं दे सकते तो उसके लिए कुछ निकालते हैं, और फिर आसानी से आसान है बाहर से पदार्थ ले ले, उनको दे दे, वो भी खुश हम भी खुश इस प्रकार से। वो देवानंद का पिक्चर था ना, हरे राम हरे कृष्ण मेरे ख्याल में, तो वो कहती है कि आदत कैसे लगी, तो खाना खाने के लिए मैंने माँ से पूछा तो बोली कि वो जेब में से पैसे निकालो, लेके जाओ खाना लेके आओ। अगर ऐसी स्थिति रहेगी, माँ ही खुद बोलेंगी या पिता ही खुद बोलेंगे कि खाना लेके आओ बाहर से और खाओ, तो लोगों को ये आदत पड़ेगी बच्चों को, इससे कोई दूसरी कोई आपत्ति नहीं है। तो मेरे ख्याल में इसके बारे में तो गहराई में जाकर सोचना पड़ेगा, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बहुत सारी चीजें,
वो तो अपने आप में पूरा एक अलग सा विषय
है, अलग सा विषय है। तो ये भी एक खाना खिलाने का है। कुछ डायबिटीज के वगैरह मरीज होते हैं, या पेन किलर्स लेने हैं, तो मुझे अभी इंसुलिन लेना है या डायबिटीज की गोली लेनी है, इसलिए मैं खाना खा लेता हूँ, ऐसा बताते हैं।
खाली पेट नहीं ले,
खाली पेट नहीं ले रहे हैं, नहीं खाली पेट ले लेंगे तो तकलीफ होती है उससे, तो ये भी जबरदस्ती खाना खिलाना है। तो हम सुझाव देते हैं कि मत खाओ, दवा भी न मत खाओ और खाना भी मत खाओ। भूख नहीं है ना आपको सुबह 8 बजे, केवल इंसुलिन लेना है या गोली लेनी है इसलिए खाना खाते हो, तो मत खाओ। आपको 10:30-11 बजे भूख लगती है तो 10:30-11 बजे गोली ले लो, इंसुलिन ले लो या खाना खा लो, सुबह का टाल दो उस समय में। तो ये लोगों को शुरू में बहुत कठिन लगता है कि ऐसा कैसे करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन होता है इस प्रकार से। अगर करते हैं तो इंसुलिन का डोज कम लगने लगता है, इंसुलिन छूटता है, ऐसा भी होता है, साथ में दवाई भी काम करती है इस प्रकार से। तो इस प्रकार का फोर्सफुल ईटिंग तो नहीं होना है, भूख नहीं है। एक अहम नियम ऐसा है कि जब भूख नहीं है तब खाना नहीं खाना है।
ऐसा नहीं कि आप सिर्फ घड़ी देखकर खाना खा रहे हैं, वो बात नहीं है। समय से खाना जरूरी है, लेकिन तभी जब उस समय भूख लगी।
बराबर। तो ऐसा होना है कि अगर एक सेट टाइमिंग है हमारा, तो उस समय हमें भूख लगेगी। मैं शिफ्ट वाले लोग हैं उनके बारे में मैं कहता हूं कि कंपनी में आपका भोजन जिस समय में होता है, सेकंड शिफ्ट है 8 बजे भोजन होता है, तो फर्स्ट शिफ्ट भी होगी तो घर पे 8 बजे ही खाना खाओ। कंपनी में 2:30-12 बजे होता है भोजन का समय, तो अगर सेकंड शिफ्ट भी है तो दोपहर में 12:30 बजे ही खाना खाओ। तो एक टाइमिंग सेट करो इस प्रकार से,
और अपने आप अपने शरीर को उस नियम के साथ
जोड़ दो इस प्रकार से। तो फिर उस समय में भूख लगती है, खाना खाते है तो ठीक होता है इस प्रकार से। लेकिन ये चेंजिंग होता है अभी बहुत सारे लोगों में। हम जब पूछते हैं कि खाना कितने बजे खाते हो, तो बड़े अजीब अजीब बात है, 11 से लेकर 2 बजे तक या 12 से 3 बजे तक कभी भी खाना खाते हैं इस प्रकार से। रात का भी खाना ऐसा ही भी चलता है इस प्रकार से। मैंने एक आईटी फील्ड का अनुभव सुना था, बहुत ही संगीन है अनुभव, कि 34 बरस की युवा थी लड़की और ओवेरियंसिस था, उसको ऑपरेशन करने के लिए कहा था। उसके पहले 28वें बरस में उसको दूसरे ओवेरियम में सिस्ट हुआ था और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो उसके लिए कुछ उपाय किए, उसका फायदा नहीं हुआ, तो उन्होंने हिस्टेक्टोमी कर दी, गर्भाशय निकाल दिया गर्भाशय, और वो ओवरी भी निकाल दी। अब 6 बरस के बाद दूसरी ओवरी में सिस्ट हो गया, वो बढ़ने लगा, तो बताया कि अभी इसका भी ऑपरेशन करवा दो। तो मुझे पूछने के लिए आए कि इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं, कहीं इसका ऑपरेशन टाल सकते हैं। तो जब मैंने हिस्ट्री लेना आरम्भ कर दिया तो सुबह कितने बजे उठती हो, उसका जवाब था कि वो निश्चित नहीं है वो। तो मैंने कहा ऐसी क्या चीज है निश्चित नहीं है, तो बोले नहीं मैं अगर 8-9 बजे तक घर पे आ जाते हूँ तो सुबह 6 बजे उठ लेते हूँ, 12 वगैरह बज जाते हैं तो 8-9 बजे उठती हूँ, सुबह 4-5 बजे आते हैं तो 11-12 बजे उठती हूँ। तो मैंने कहा फिर इस हालत में रात के खाने का क्या करते हैं, वो तो आता रहता है, आप जो भी कुछ कैंटीन से मंगवाएंगे, चाहे सैंडविच हो, कॉफी हो, ढोकला हो, समोसा हो, जो भी है वो मिलता रहता है, कभी भी आप बुलाओ मिलता रहता है। तो मैंने कहा कि आपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा क्या जब हिस्टेक्टोमी हुई आपकी, कि इसका कारण क्या है, ब्लीडिंग इतना हो रहा है इसका कारण क्या है, उसने पूछा नहीं था। पूछते भी तो क्या जवाब आता, हार्मोनल इम्बैलेंस है, बस यहीं पे रुक जाते हैं लोग। हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हुआ, उसके बारे में तो सोचते ही नहीं है। जब तक हम खाने पीने के बारे में, स्ट्रेस के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, तब तक हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हुआ ये इसका कोई पता ही नहीं लगेगा। मैंने कहा आपके आईटी फील्ड से इसका उत्तर जुड़ा हुआ है, अब 24 बरस से काम कर रही है, 4 बरस के बाद ये आपको बीमारी हुई इस प्रकार से, लेकिन ऐसे कंसेप्ट ही नहीं है ना कि आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए हो और वो आपके लाइफस्टाइल के बारे में पूछो, आप क्या खाती पीती हो ऐसा पूछो, कंसेप्ट ही नहीं है एलोपैथी में। आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ या फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाओ या किसी आर्थोपेडिक सर्जन के पास जाओ, कोई भी आदमी आपको कुछ पूछने ही वाला नहीं है। आपके डॉक्टर के पास जाएंगे वो भी पूछेंगे नहीं कुछ। तो ये एलोपैथी में खाना पीना और रोग इसका जो संबंध है वो नहीं है, वो आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से, क्योंकि वो उसका दोष और दोष का रोग एक सीधा रिलेशन है इस प्रकार से। तो एक सबसे अहम चीज है इसके बारे में, कहने का मतलब ये है कि चाहे हार्मोनल इम्बैलेंस हो इस प्रकार का, लेकिन उसका कारण क्या है वो ढूंढना चाहिए ना। अभी जो चिकन है उसको हार्मोन्स देते हैं, बड़ा करते हैं, क्योंकि कमर्शियलाइज हो गया, धंधा हो गया उसका, वो हार्मोन्स कहाँ जाने वाले हैं, उसको जो फीड किया गया है हार्मोन से, वो जो चिकन खाने वाले लोग हैं उनमें वो आने वाला ही है इस प्रकार से।
नहीं, ये तो बात है कि जो नॉन ऑर्गेनिक फूड सोर्सेज हैं चाहे उसमें फलों में पेस्टिसाइड वाली बात हो और किसी प्रोडक्ट में और हार्मोन्स की बात हो, वो तो आज के दौर में बहुत बड़ा एक बड़ा मुद्दा है और समस्या भी है।
तो ये एक चीज इस प्रकार की रहती है। और ये फोर्सफुल ईटिंग की बात हम कर रहे थे, वास्तव में इसमें थोड़ा सा डाइवर्जन हो गया। और एक डाइटिंग होता है, अभी एक उसका भी फैड चल रहा है कि ओबेसिटी एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, मोटापन जो है वो। और फिर उसको कम करने के लिए कुछ भी लोग करते हैं इस प्रकार से, और उसमें ज्यादातर स्टार्विंग होता है। अब ऐसी स्थिति आ जाती है कि मन का समाधान नहीं होता है उसमें, तो ये टिक नहीं पाता ज्यादा। मन का समाधान होना और शरीर को सभी तत्व मिलना, शरीर की भी आपूर्ति होना, ये दोनों चीजें उसमें महत्वपूर्ण है। इनको छोड़कर कोई भी आप डाइट का प्लान बनावे वो सक्सेसफुल नहीं होता। 8-15 दिन लोग करेंगे, 20 दिन करेंगे, छोड़ देंगे और फिर दुगना फिर उसका असर हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये भी सरासर गलत इस प्रकार की बात है। अगर मोटापन कम करना है तो वास्तव में आहार क्या ले रही है, कैसे ले रही है, व्यायाम वगैरह कुछ कर रही है नहीं कर रही है, साइकोलॉजी कैसी है, ये सभी चीजों को ध्यान में रखकर करना है। ये एक अहम चीज है। दूसरे, टाइम पास करने के लिए खाना खाते हैं, ये भी एक अजीब चीज है कि सफर कर रहे हैं यात्रा में, कुछ काम नहीं है, बाहर का देख रहे हैं, चलो मूंगफली या फिर तली हुई चीजें इस प्रकार से, पॉपकॉर्न या ऐसा कुछ, या पॉपकॉर्न एक ठीक है थोड़ा सा, लेकिन वेफर्स वगैरह ऐसा कुछ जो है वो खाते रहते हैं इस प्रकार से। टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते देखते खाना खाते रहते हैं इस प्रकार से। ये स्थौल्य का एक महत्वपूर्ण कारण है कि वास्तव में भूख लगी नहीं है, कितना खाना खा रहे हैं उसके बारे में कुछ पता नहीं है,
खाते
जाते हैं, टाइम भी नहीं है, खाना खाते रहते हैं इस प्रकार से। तो ये भी गलत। डिप्रेशन में भी खाना खाते हैं ज्यादा, ये भी अलग चीज होती है कि मन को कहीं पे एंगेज करना है। और सबसे आसान तरीका है कि खाते रहो, हाथ में चीजें मिल सकती है कोई भी, तो थोड़ा 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 करके खाते रहो इस प्रकार से, तो ये भी गलत है। तो इस विभिन्न तरीके से लोग खाते रहते हैं, ऐसा है कि मंचिंग हैबिट जिस प्रकार से कही गई है, तो ये हमारे हिसाब में गलत इस प्रकार की ये बात है। दो ही दफा खाना खाना है, वही सबसे अहम चीज है। और यही दाल चावल रोटी सब्जी यही खाओ, बाकी कुछ मत खाओ, यही सबसे अहम चीज है। अब ईटिंग आउट ये भी एक हो गया बहुत सारा
जी।
और मैंने लोग देखे कि हफ्ते में 4-4 बार भी बाहर जाकर खाना खाते हैं या उससे भी ज्यादा खाते हैं, ऐसा है। तो इसमें एक एंजॉयमेंट की कंसेप्ट है
जी,
और थोड़ा फन ऐसा भी है। तो खाना एंजॉय करना चाहिए, उसमें मैं सहमत हूं, जो भी है वो समरस होकर उससे खाना है, लेकिन फन नहीं है उसमें, वो नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ फन एक्चुअली। तो एक वो पवित्र कर्म है, मराठी में हम कहते हैं उदरभरण नो है दाणी दे यज्ञ कर्म, यज्ञ कर्म जैसा है वो इस प्रकार
यज्ञ करने
तो उसी प्रकार से उसको देखना है। तो उसमें उस हिसाब से भी खाना कैसे खाए, कितना खाए, कब खाए, ये सब चीजें महत्वपूर्ण इस प्रकार से रहेगी। तो मेरे ख्याल में किस प्रकार से खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, इसके बारे में काफी बहस हमने अभी की है
जी।
मेरे किताब में भी ये सभी चीजें हैं, लाइफस्टाइल द की टू हेल्थ, इसमें आपको मिलेगी। लेकिन ये विषय बहुत बड़ा है, और वैसे आयुर्वेद में वर्ग पर आहार के वर्ग के बारे में बताया, द्रवद्रव्य विज्ञानी और अन्न स्वरूप विज्ञानी, ये दो प्रधान अध्याय रहते हैं ग्रंथों में। तो द्रवद्रव्य में पानी से लेकर दुग्ध वर्ग या फिर इक्षु वर्ग वगैरह वगैरह इस प्रकार के वर्ग बताए गए हैं, मध्य वर्ग भी उसमें समाविष्ट है। और फिर अन्न स्वरूप विज्ञानीय में शुक धान्य, शिंबी धान्य वगैरह इस प्रकार के वर्गीकरण करते हैं, ये डाइकोटिलीडॉन्स, मोनोकोटिलीडॉन्स वगैरह इस प्रकार से लेकर। और फिर फल वर्ग है, सब्जियों का वर्ग है, मांस वर्ग है, इसे बहुत सारे वर्ग बताए गए हैं। और फिर उसके एक एक को लेकर, उसमें से एक एक चीज को लेकर उसके बारे में ज्यादा बहस की है। ये बड़ा विषय है, किताब में लिखा है। हम शायद डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ विचार विमर्श जरूर करेंगे, बड़ा विषय है डेयरी प्रोडक्ट्स के लेकर इस प्रकार से। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होगी कि इसके बारे में बता सकेंगे, लेकिन फिलहाल मैं समझता हूं कि आजकल की जो बीमारियां हैं उसके बारे में अगर हम बताएंगे तो लोग ज्यादा सजग हो जाएंगे।
बिल्कुल।
खास करके मेरा काम कैंसर, हार्ट डिसीज, डायबिटीज के बारे में है, मेरी किताबें भी उसमें है, मराठी वाली है, अंग्रेजी में भी है, तो मैं सोचता हूं कि अगले दो मुलाकातें हम कैंसर, हार्ट डिसीज, डायबिटीज के बारे में करेंगे और फिर आगे एलर्जी के जैसे है, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे है, इन्फेक्शियस डिसीजेस है, इनको पहले लेके करेंगे
जरूर।
और ये सिलसिला फिर खाद्य पदार्थों के बारे में भी चलता रहेगा, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। बहुत सारे विषय है ऐसा कुछ जितना हम बोलते रहेंगे उतना कम है इस प्रकार का है। तो ठीक है, अगले मुलाकातें जो है वो इन रोगों पर करते हैं और आहार के बारे में अभी यहीं पे रुकते हैं, थोड़ी देर बाद फिर से इसको आगे लेकर चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा।
जी तो इसी के साथ हम आज के इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।